शुद्ध भक्ति का लक्षण, हम तीन लक्षण का विचार अब तक कर चुके हैं। वो तीन लक्षण क्या है, किसको याद है? पारुल, हाँ, सांद्रानंद विशेषात्मा, हाँ, जो कल हम विचार किया था। सांद्रानंद विशेष आत्मा का मतलब है सुख, आनंद प्रदान करता है। शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है आनंद प्रदान। शुद्ध भक्ति आनंद प्रदानकारी होती है। तो आज हम भक्ति का चौथा लक्षण, चौथा लक्षण ठीक है हिंदी, चौथा, और क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, क्या होता है, चतुर्थ, चतुर्थ नहीं, चौथा ही ठीक है। ओके, शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ, दुर्लभ है। शुद्ध भक्ति प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, आसान नहीं है। शुद्ध भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, इसका विचार आज हम करेंगे। शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी हो तो भी वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। भगवान भक्ति प्रदान नहीं करना चाहते हैं, इसका विचार अब होगा। भगवान मुक्ति दे देते हैं परंतु भक्ति देना नहीं चाहते, क्यों? अच्छा, इसका विचार अब हम करेंगे। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, शुद्ध भक्तों रूप की गुरु कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है, इसकी सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, भक्ति प्राप्ति का उपाय क्या है? श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण का कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है, इसके सिवाय और कोई अन्य उपाय नहीं है। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव जी ने सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वो ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है तो वो भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्मकांड के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्म तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पार्वती। कौन सी शास्त्र में इसका वर्णन हुआ है? तंत्र शास्त्र। तो शिव जी, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, शिव जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब यह विचार करना चाहिए, शिव जी कौन है? शिव जी, शिव जी एक एक रूप से शिव जी भगवान का गुण अवतार है, अवतार है, और भगवान के भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा संभु, सारे वैष्णवों में से शिव जी का पद श्रेष्ठ है। और शिव जी यहां सती को कह रहे हैं, हे सती। सती कौन है? पार्वती, शिव जी के शक्ति। यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वो ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण कर सकता है तो वो भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मतलब ज्ञान के द्वारा इस भौतिक बंधन से मुक्ति मिल सकता है। वेद वर्णित कर्मकांड के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है। वैदिक कर्मकांड का जो विधियां हैं, मतलब वो कौन सी विधियां हैं कर्मकांड का? वेद का तीन कांड हैं, कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। तो कर्मकांड में किसका वर्णन हुआ है? कर्मकांड के में वर्णन हुआ है तपस्या, याग, यज्ञ आदि करके कैसे इस भौतिक जगत में हम सुख प्राप्त हो सकते हैं, इसका वर्णन हुआ है कर्मकांड में। जैसे आपको पता है, ये कोई अगर सारे पृथ्वी का राजा बनना चाहता है तो कैसे सारा पृथ्वी का राजा बन सकता है? अगर आप चाहते हैं सारा पृथ्वी का राजा बनने को, अगर कोई चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करने से पृथ्वी का राजपद मिलता है, और 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र का पद का प्राप्ति होता है। तो वैसे इस भौतिक जगत में कैसे हम भोग कर सकते हैं, इसका सारे उपाय या विधियां वेद का कर्मकांड में वर्णन किया गया है। कोई भी हम चाहते हैं, आप सोचिए को क्या चाहते हैं? रुपया चाहते हैं? नहीं, कोई अगर चाहते हैं, आप तो नहीं चाहते हैं, अगर कोई रुपया, बहुत सारा रुपया कमाना चाहते हैं तो वेद में निर्देश है ऐसे ऐसे तुम तपस्या करो या यज्ञ करो, तो करने से वो मिल जाएगा। तो ऐसे सारे निर्देश कर्मकांडों में है। वेद वर्णित कर्मकांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद पर पद तक उठ सकता है, और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपे न भोग कर सकता है। अगर भौतिक जगत को हम भोग करना चाहते हैं तो कर्मकांड के अनुसार कार्य करने से हमें भौतिक जगत का सुख मिल सकता है। हजारों जन्म तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो देखिए भक्त, तो आप बताइए कितना दुर्लभ है। आप इंद्र का पद तक प्राप्त हो सकते हैं, आप ब्रह्मा के पद तक प्राप्त हो सकते हैं, परंतु भक्ति नहीं मिल सकता है। भक्ति इतना ही दुर्लभ है। भक्ति कितना दुर्लभ है उसके बारे में फिर आगे हम मैं और कुछ बताऊंगा। श्रीमद् भागवत में भी प्रह्लाद महाराज द्वारा इस पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूली का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। बिना महत पद रजोभिषेकम, महत का मतलब महान भक्त, उनका पद रज, रज का मतलब क्या है, धूलि का कण, पैर का धूलि का कण से अभिषिक्त न होने तक ये भक्ति नहीं मिल सकता है। चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह से मुक्त होता है। श्रीमद् भागवत में नारद भी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक हैं। इसमें भी बड़ी बात ये है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करने में भी पालन करते हैं मानो वे आपके संदेश वाहक हो। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकते। भगवान युधिष्ठिर महाराज या पांडवों को जितना अनुग्रह किए हैं वो कोई सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकता। क्यों क्यों किए हैं? क्योंकि भगवान भक्ति के वश हैं। सब सारे संसार भगवान के वश हैं, परंतु भगवान भक्ति के वश हैं। भगवान भक्ति क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भक्ति मिलने से भगवान उनके वश में आ जाएंगे। जैसे देखिए यहां जो वर्णन हो रहा है, नारद मुनि कह रहे हैं, देखिए भगवान आपके प्रति कितना स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्य के निर्देशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं मानो कि आपके संदेश वाहक हो, है ना। भगवान दुर्योधन के सभा में गए थे युधिष्ठिर महाराज के दूत बनकर। दूत का मतलब क्या है? उसका आज्ञा पालन करने वाला। दूत का मतलब क्या है? मतलब असल में क्या हुआ, नौकर, है ना। भगवान भक्त का नौकर बन जाते हैं। और एक ये देखिए, अर्जुन, भगवान कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भगवान क्या कर रहे थे, अर्जुन का रथ का सारथी बने थे। सारथी का मतलब क्या है? सारथी का मतलब ड्राइवर, है ना। ड्राइवर को बोलते हैं ऐसे चलो वैसे चलो और वो चलते हैं। तो भगवान अपना भक्तों का आज्ञा वाहक बन जाते हैं, भक्तों का निर्देश मानने वाला बन जाते हैं। मतलब एक रूप से भगवान भक्तों का, जो यद्यपि भगवान सारे संसार के प्रभु हैं और सारे संसार भगवान के दास हैं, फिर भी भगवान अपना भक्तों का दास बन जाते हैं। इसलिए भगवान भक्ति दे ही नहीं देना चाहते। कोई ना लायक आदमी को अगर भक्ति मिल जाए तो क्या होगा। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे बिरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतदास बन जाते हैं। भक्ति के द्वारा भगवान भक्तों के कृतदास बन जाते हैं। तो आप देखिए, भक्ति दुर्लभ है या नहीं। तो ये भक्ति जब मिलता है तब उसको उस तत्क्षणात उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना ठीक है अब चलो करते हैं कल भक्ति करेंगे। आप जो कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं परंतु आप भक्ति के समय नहीं हुआ है, बाद में होगा। अगर कोई दुर्लभ वस्तु मिल जाता है तो उसको क्या आप सोचते हैं कल लेंगे? आज अगर लॉटरी मिल गया है 5 करोड़ रुपया का तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे ठीक है 1 महीने बाद हम रुपया लेंगे लॉटरी का पुरस्कार, ना केवल इसी आज ही शाम को प्लेन पकड़ के चले जाएंगे दिल्ली और वहां से रुपया हासिल करने के लिए। तो 5 करोड़ रुपया के लिए अगर हम ऐसा कर सकते हैं, और भक्ति कैसा है, ये सारे पृथ्वी का सारे दुनिया का सारे दौलत अगर एक एक पल्ला में रखते हैं और दूसरे पल्ला में अगर भक्ति रहता है तो कौन पल्ला भारी होगा? भक्ति ही भक्ति के तुलना से ये सारे दुनिया के संपद तुच्छ है। भक्ति का एक कर्ण के समान ये सारे दुनिया के दौलत नहीं बन सकता है। तो भक्ति इतनी दुर्लभ है, इसलिए भक्ति को क्या कहा गया है? सुदुर्लभ। केवल दुर्लभ ही नहीं, अत्यंत दुर्लभ, सुदुर्लभ। और विशेष रूप से ये जो प्रेम भक्ति है, मतलब वृंदावन का जो भक्ति है, ब्रज भक्ति, वृंदावन एक ऐसी स्थान है जहां ब्रह्मा जी को भी प्रवेश मिलना मुश्किल हो जाता है, शिव जी का भी प्रवेश मुश्किल हो जाता है, लक्ष्मी जी का भी प्रवेश मुश्किल हो जाती है, लक्ष्मी जी का भी वृंदावन में प्रवेश। आप सुने हैं लक्ष्मी देवी वृंदावन में प्रवेश किए हैं? लक्ष्मी देवी किए थे। कैसे? लक्ष्मी देवी को जब रासलीला के वर्णन सुना तो लक्ष्मी देवी को रासलीला दर्शन कर देखने के लिए बहुत इच्छा हुआ। तो लक्ष्मी देवी ने नारायण को बताया कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। नारायण तब बताया, तुम अगर वृंदावन में जाना चाहती हो तो वृंदावन के कोई गोपिया के शरण लेके तुमको वहां जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी देवी बताया, कैसे संभव? मैं लक्ष्मी हूं, मैं और किसी के पास कैसे सर झुकाऊं? मैं आपका पत्नी हूं, मैं और किसी के सामने कैसे सर झुकाऊं? तो नारायण बोला, तब वृंदावन जाना भी नहीं संभव होगा। अगर तुम गोपिया के शरण ले नहीं लोगे तो वृंदावन में जाना संभव नहीं। तब लक्ष्मी देवी बहुत तपस्या करने लगी, बहुत कठोर तपस्या किया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास आए, आकर पूछा, लक्ष्मी क्या हुआ, तुम इतना तपस्या, कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? लक्ष्मी ने बोला कि मैं वृंदावन में जाना चाहता हूं, आपको रासलीला देखना चाहता हूं। तब नारायण लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल में धारण करके उनको वृंदावन में ले गया। वो जो वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को धारण किए थे उसका वो है श्री वत्स चिन्ह। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, श्री का जो अधिष्ठान भगवान के वक्षस्थल में स्थापन करके लक्ष्मी देवी को अपना वक्ष में धारण करके भगवान लक्ष्मी देवी को वृंदावन में प्रवेश करने का सुयोग प्रदान किए थे। तो आप बताइए वृंदावन प्रवेश कितना दुर्लभ है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे सबके लिए वृंदावन का प्रवेश सुगम कर दिए। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं। बस श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं। राधा रानी, राधा रानी और कृष्ण एकत्रित होकर चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी कौन है? राधा कौन है? कृष्ण का शक्ति, लादिनी शक्ति। श्री राधाया, श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति का मतलब भगवान का जो आनंददायिनी शक्ति, उसका मूर्तिमती प्रकाश है श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी है सारे भक्तों में से श्रेष्ठ भक्त। कृष्ण का अभिलाषा हुआ था कि राधा रानी का प्रणय महिमा कैसी है वो समझने को। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृश बानई वाशाद्य येनाद्भुत मधुरिमा कीदृश बा मोदीय। और मुझ में कैसा माधुरी है जिसके कारण राधा रानी मेरे प्रति इतना आकृष्ट होती है। और सौखन चस् मदनुभवत कीदृश बेती लोभा। मुझे प्राप्त होकर राधा रानी कैसी सुख, मुझे भक्ति करके राधा रानी कैसी सुख आस्वादन करती है। ये तीन विषय जानने के लिए कृष्ण का अभिलाषा हुआ था, लोभ हुआ था, बेती लोभात, लोभ लालच हुआ था। तद भावड समझनी सचिगर्भ सिंधो हरिंदु। इसलिए श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सची माता के गर्भ से चंद्र के रूप में उदित हुए थे। सचिगर्भ सिंधो हरिंदु। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु है राधा और कृष्ण का मिलित प्रकाश। शक्ति और शक्तिमान एक है या अलग है? हाँ, एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जब शक्ति और शक्तिमान अलग हो जाता है तो वह है राधा कृष्ण। शक्ति राधा और शक्तिमान कृष्ण। और शक्ति और शक्तिमान जब एक हो जाता है तब वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये देखिए, ये सारे शास्त्र का वाणी है, ये हमारा मन के बनाए हुआ कुछ बातें नहीं है, ना कि मैं अपना कल्पना से कुछ बोल रहा हूं। मान लिया है, ठीक है। ये शास्त्र का जो प्रमाण, ये हम मैं प्रदान करूंगा। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्मादेकात्मानवोपी भूवि पूरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैकमाप्तं राधा भाव दुति शुभलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का जो प्रणय की विकार रूप जो लादिनी शक्ति है, उसकी लादिनी शक्ति है, लादिनी शक्ति का प्रकाश है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्माद् एकात्मानवोपी भूवि पूरा देह भेदं गतो। पूरब में पूरा, पूरा मतलब देह भेदंगत तो शक्ति और शक्तिमान दो रूप से प्रकट हुए थे और उन दोनों ने इकट्ठा होकर चैतन्याख्यं प्रकटम अधुना चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों ने इकट्ठा होकर प्रकट हुए। कैसे? राधा भाव द्युति सुपलिता, श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव और राधा रानी का द्युति, द्युति का मतलब कांति वर्ण, राधा कृष्ण का वर्ण कैसा है? श्याम, राधा रानी गोरी। तो कृष्ण जब राधा रानी का वर्ण लेकर राधा द्युति और राधा रानी का भाव, भाव क्या है? राधा रानी का भाव भक्ति भाव है। श्री कृष्ण ने भक्ति भाव लेकर और राधा रानी का जो भक्ति का भाव उसको ग्रहण करके और राधा रानी का अंग कांति ग्रहण करके, मतलब तब राधा और कृष्ण जब इकट्ठा हो एक हो जाते हैं तो क्या होता है? कृष्ण का वर्ण गोरा हो जाता है, मतलब सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांगश चंदनांग। ये भी वाणी किसका कहाँ का है? महाभारत का वाणी है ये, चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन हो रहा है। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांगश चंदनांग दी सन्नास कृत क्षमो शांत निष्ठा शांति परायण। अब देखिए महाभारत का रचना कब हुआ था, महाभारत का घटना कब हुआ था और रचना कब हुआ था? 5000 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ है? 500 साल पहले। परंतु 5000 साल पहले देखिए कृष्ण का एक अवतार का वर्णन हो रहा है। कृष्ण का इस अवतार में उसका रूप कैसा हो, रंग कैसा होगा, वर्ण कैसा होगा? सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब सोना जैसा, सुवर्ण वर्ण हेमांग, हेम हेम सोना का जो कांति है उसे हेम कहा जाता है। हेम रूप अंग, उसका शरीर का रंग होगा सोना के भांति। और वरांगश चंदनांग दी, उनका सुंदर शरीर चंदन से चर्चित रहेगा। और सन्यास कृत, उन्होंने सन्यास ग्रहण करके शमो शांति निष्ठा शांति परायण। सन्यास ग्रहण करके शम मतलब आत्मसंयम और शांति और धर्म के प्रति निष्ठा के मार्ग प्रदर्शन करेंगे। तो आप बताइए किसका वर्णन है, भगवान का कौन अवतार ऐसे हुआ है? हाँ पता है। और तो कली युग में भगवान का अवतार का ये वर्णन हमारे शास्त्र में हुआ है, महाभारत में हुआ है, श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। कृष्ण वर्णं तिशक कृष्णम संग पंगास्त्र पार्षदम यज्ञई संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो ऐसे सारे वर्णन हुआ है। तो श्री कृष्ण राधा रानी के भाव लेकर जब आते हैं तब उनका आचरण कैसा होता है? भक्तों के जैसे। और भक्तों क्या चाहते हैं? आप लोग भक्त हैं, हाँ आप क्या चाहते हैं? सरला तुम कुछ कहना चाहती हो? भक्त क्या चाहते हैं? हाँ अच्छा, हाँ भक्त क्या केवल अपने लिए भक्ति चाहता है? भक्त चाहता है कि सारे दुनिया भक्त बन जाए, है ना। तो कृष्ण जब भक्ति भाव लेकर आया श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब उनका मनोभाव भी ऐसा हो गया, सारे दुनिया को भक्ति मिल जाए। देखिए यद्यपि भक्ति सुदुर्लभ है, कृष्ण देना नहीं चाहता है, परंतु जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो सबको देने के लिए तैयार रहते हैं, देना चाहते हैं। आज देखिए हम इतना हमारे लिए भक्ति इतना सुगम क्यों हो गए हैं, इतना दुर्लभ होते हुए भी भक्ति हमारे लिए सुगम हो गए हैं, है ना। कैसे हुआ है प्रामाणिक जी? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु बांटे हैं, केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से? नहीं, चैतन्य महाप्रभु का भक्त की कृपा से, शिल प्रभुपाद की कृपा से। शिल प्रभुपाद सारा दुनिया भर इस कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने केवल भारत में ही प्रचार किया था, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी किए थे। आप लोग को बंगला आते हैं? आता है? अच्छा, जिसको आता है उसको पता चलेगा। पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। देखिए बंगला और हिंदी एक ही जैसा है। पृथ्वी ते मतलब पृथ्वी में, पृथ्वी में धरती पर, आछे आछे मतलब है, जतो जतो का मतलब जितने, नगर आदि ग्राम, नगर या नगर और गांव, शहर और गांव, इस पृथ्वी में जितने सारे नगर और गांव हैं, सर्वत्र का मतलब वो तो हिंदी भी है, सर्वत्र प्रचार प्रचार होइबे, प्रचार होगा मोर नाम कृष्ण नाम। तो अब बताइए, महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया कि पृथ्वी के हर सारे गांव में और शहर में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। जो काम महाप्रभु खुद संपन्न नहीं किए हैं, उस काम करने, कार्य साधन करने के लिए उन्होंने अपना भक्तों को भेजे हैं। अपना भक्तों के लिए महाप्रभु ने ये रिजर्व रखे थे, क्योंकि भगवान जो बड़े काम जो होता है उसका उसका क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब श्रेय, उसका कृतित्व, यश अपना भक्तों को देते हैं। भगवान अपने से अपना भक्तों को महिमा और अधिक कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी श्री कृष्ण का इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान स्वयं उनको महिमा का प्रचार करने के लिए भविष्यवाणी किए हैं कि एक ऐसे आदमी आएंगे, आकर सारा पृथ्वी में, सारा पृथ्वी पर इस भक्ति का प्रचार करेंगे, और उन्हीं की कृपा से हमको आज ये मिल रहा है। नहीं तो देखिए, कृष्ण भक्ति भारत से भी लुप्त हो गया था। भारत में, भारत का प्रभुपाद जब भारत में थे, उन्होंने बोलते थे हम लोग को कि भारतीय ने इसको भक्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। दूसरी प्रभुपाद चले गए थे अमेरिका, और अमेरिका से भक्त बना के भारत में लाए, और भारतवासियों ने जब देखा, अरे देखो ये अमेरिकन और अंग्रेज लोग भक्त बन रहे हैं, तो चलो हमको भी भक्त बनना चाहिए। नहीं तो भारत में भी इसका भक्ति नष्ट हो गया था, लुप्त हो गया था। यद्यपि भक्ति सुदुर्लभा है, परंतु हमें बहुत सरलता से, बहुत आसानी से हमें ये भक्ति आज मिल रहा है ना? और क्यों मिल रहा है, इसका भी वर्णन हुआ है। भक्तों के कृपा से भक्ति का प्राप्ति होता है। जैसे आप लोग भक्त हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, हर जगह भक्ति का प्रचार हो जाए, तो आप ये वासना कर रहे हैं ना, कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा। तो तुम्हारी कृपा से सबको भक्ति मिल जाएगा। ऐसे भगवान भक्त चाहते हैं, और भगवान भक्त के मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है किसी को? यस, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? या दैट विल डिस्कस टुमारो। एक्चुअली कंपेयर टू भक्ति, लिबरेशन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। जस्ट लाइक व्हेन यू हैव बीन इन्वाइटेड टू द किंग्स पैलेस टू स्टे विद द किंग, डू यू सेपरेटली वॉन्ट टू बिकम फ्री फ्रॉम द प्रिजन? इफ द प्रिजन, फ्रीडम फ्रॉम प्रिजन इज लिबरेशन, राइट? Then staying with the king in his palace is the facility of bhakti. So when you got the facility to stay with the king in his palace, why, the king invited you, come, you stay in my palace. Right? Then do you have to separately ask for to the king, please give me liberation. Huh? Please free me from the prison. Will you? So that is how liberation becomes insignificant compared to bhakti. Right? Hare Krishna. Yes. Huh? Where is the mic? Okay. Yeah, go ahead. Very good, but a very advanced question. No, Chaitanya Mahaprabhu, that is Krishna in the mood of Srimati Radharani, comes only once in a day of Brahma. On the 28th Chaturyuga, how many Chaturyugas are there in a day of Brahma? Krishna Virya? 1,000. Chaturyuga, you know what Chaturyuga means? The four yugas together. Satya, Treta, Dwapar and Kali. These four yugas together make one Chaturyuga. And a day of Brahma consists of 1,000 Chaturyugas. Now, in a day of Brahma, that means in 1,000 such Chaturyugas, on the 28th Chaturyuga, that is, Brahma's day begins. First Chaturyuga, second Chaturyuga, third Chaturyuga. And this way, the 28th Chaturyuga, in Dwapar Yuga, Krishna comes and reveals his Vrindavan pastimes. That is, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, reveals his Vrindavan pastimes. And in the following Kali Yuga, Krishna comes with the mood of Srimati Radharani as Sri Chaitanya Mahaprabhu. So in every Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu doesn't come. Yes. हाँ करते हैं, जैसे हमारे मंदिर में राधा कृष्ण हैं और साथ में चैतन्य महाप्रभु हैं. और हम कैसे देखते हैं, जब हम राधा कृष्ण को देखते हैं तो हम उनके जगह, हमें ये मनोभाव रहता है कि ये हैं श्री चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो कृष्ण चैतन्य, सो दैट इज ऑल्सो कृष्ण कॉन्शियस. It is actually Chaitanya Mahaprabhu's teachings. Yes, it is Krishna. देखिए चैतन्य महाप्रभु आके बोला, क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु नहीं बोला कि मेरा पूजन करो, मेरा नाम करो. चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये कृष्ण भगवान है, उनका पूजन करो, उनका नाम कीर्तन करो. चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान जब आए तो अपने आप को भगवान के रूप में स्थापना नहीं किया, भक्तों के रूप में आके भगवान को स्थापना की. कृष्ण भगवान है. चैतन्य महाप्रभु नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं. चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यद्यपि वो भगवान है, परंतु चूंकि वो उन्होंने भक्ति भाव लेकर आए हैं, राधा रानी के भाव लेकर आए हैं, उनका मनोभाव राधा रानी जैसा है, और कह रहे हैं कि ये कृष्ण ही भगवान है. यस महेश. हाँ, असल में ये हरे कृष्ण महामंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं, उन्होंने बांटे हैं, तो इसलिए इस मंत्र जपने का अधिकार उन्होंने सबको दिए हैं. नहीं तो मंत्र तो गुप्त रहता था, है ना? मंत्र गुप्त रहता है. दीक्षा के समय गुरु ने, गुरु मंत्र दान करते हैं, नहीं तो मंत्र नहीं मिल सकता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र को एकदम सबको दिए हैं, फ्रीली दिए हैं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के लिए दीक्षा का जरूरत नहीं होता है, बगैर दीक्षा नाम कर सकते हैं। आप जैसे पूछ रहे हैं कि दीक्षा को बिना भी नाम करके भक्ति भक्ति प्राप्त होकर भगवत धाम में हम आपस जा सकते हैं, परंतु दीक्षा लेने से कुछ सुविधा होता है। जैसे एक गाइड अगर होता है तो चलने में आसान होता है ना, जिसका मार्ग के ज्ञान है। आप कोई नए जगह में गए हैं, अकेला चलने में थोड़ा मुश्किल होगा, कोई अगर राह दिखाने वाला होता तो इसलिए गुरु का जरूरत होता है जो हमें इस मार्ग में आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं। अगर गुरु नहीं भी हैं तो भी नाम जप कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है, और उस भगवान की कृपा भी मिल सकता है। परंतु यहाँ एक और भी ये है कि भक्ति का मतलब है आत्मसमर्पण, भक्ति का मतलब भगवान के पास समर्पण। तो भगवान के पास समर्पण जो है वो कैसे होता है, भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा होता है। तो इस भगवान के पास समर्पण के लिए भगवान के प्रतिनिधि के पास अपने आप को समर्पण के रूप में दीक्षा लेने का जरूरत होता है। ये दो विचार हैं। मंत्र के लिए आप बगैर दीक्षा जप कर सकते हैं, परंतु समर्पण के लिए भक्तों के पास अपने आप को निवेदन करना, उनका शरण लेने का जरूरत है। यस, हाँ बहुत अच्छा। देखो आध्यात्मिक जगत में एक बहुत हो सकते हैं और बहुत भी एक हो सकते हैं। हाँ? जैसे चैतन्य राधा कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, फिर राधा रानी भी गोलोक वृंदावन में है, कृष्ण का लीला चल रहा है वहां। हाँ? राधा रानी वहां भी है, यहां भी है। हाँ? यद्यपि आए हैं फिर भी ये अचिंत है, ये हमारा चिंता के अतीत है। तो कृष्ण जब राधा रानी के भाव लेकर आए हैं तो राधा रानी सोचा कि मैं देखूंगा कृष्ण कैसे मेरे रोल प्ले करता है। तो ये कृष्ण का राधा रानी का रोल प्ले कैसे हो रहा है ये देखने के लिए राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आए हैं। ये भगवान না না ওটা অন্য ব্যাপার। ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ একদিনে চোদ্দজন মন্বন্তর, হ্যাঁ সপ্তম মন্বন্তর অষ্টবিংশ চতুর্দশ। বৈবস্বত মনু হচ্ছে সপ্তম মনু, সেই সপ্তম মন্বন্তরে সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টবিংশ চতুর্দশ। হ্যাঁ, আর কোই প্রশ্ন হ্যাঁ চিত্র। What happens to
the other sampradayas, like the Shri Sampradaya or the Buddha Sampradaya? Do they have to come to Krishna consciousness to go back to Godhead, or is there also performing?
Because different sampradayas have different destination. This four sampradayas destination is Vaikuntha.
So
they are not.
So we aspire to go back to Krishna.
Well, then they can take shelter of Chaitanya Mahaprabhu. And that way they will become qualified. And some, even coming in contact with Chaitanya Mahaprabhu, may not even give up. Like Anupam, Rupa Goswami and Sanatana Goswami's brother. He was a devotee of Ramchandra. So when Rupa Goswami and Sanatana Goswami persuaded him to become a devotee of Krishna, he thought about it the whole night. And the next morning, he said that, I can't give up my worshipable Lord. I can't give up Lord Ramchandra. So they said that's the master who doesn't give up his servant, and servant who doesn't give up his master is the greatest. So it's a matter of relationship.
So Guruji, if one is very attached in their devotional service to Ram or to Balaji, do we still convince them to come into Krishna consciousness, or do we just let them carry on with their own worship?
That will depend upon the individuals.
Because I noticed, like, back home, this kind of worship is very strong. It's also Krishna in different form. But when we
condition and the staying with the king in the palace. Now, if somebody is getting out of the prison and he can live outside in a nice situation, and but you know, if there is a consideration that he can also have the option to go to the king's palace, so you know that option can be told to him, given to him. Somebody may get an offer from the prison. Okay, you're coming out of the prison, and here is a job in the Microsoft for a company executive. And another offer is to go and stay with the President of America. Right? Now, it will be up to, both the options can be given to him, and then it's up to him which one he would want to accept. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Gaur Premanande.